पृष्ठ संख्या 90। हिंदी नाटकों के संवादों में इस हद तक पात्र और रंगमंच से उसकी आंतरिकता से सूक्ष्म संबंध दिखाई नहीं देता। आधे अधूरे के संवाद भी अपनी आंतरिक लय के कारण विशिष्ट हैं, मौलिक हैं और उसमें पर्याप्त सांकेतिकता, व्यंग की चुभन है। जो आक्रामकता चरित्र में है, वही भाषा और संवादों में भी। लोगों ने इसी कारण आधे अधूरे को एक आक्रोश की भाषा कहा है। आक्रोश, आक्रामकता नाटक के टुकड़ों में नहीं, संपूर्ण नाटक में है। वही इस नाटक की जान है और नवीनता भी। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। पुरुष एक, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर डॉट डॉट, मैं इस घर में रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? हाँ, डॉट डॉट, छोटी सी बात ही तो है यह। अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है। और आगे भी बिगड़ ही बिगड़ सकता है। ब्रैकेट में लड़के की तरफ इशारा करके ब्रैकेट क्लोज, यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है मेरी वजह से? ब्रैकेट में बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके ब्रैकेट क्लोज, यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी मेरी वजह से? ब्रैकेट में स्त्री के सामने आकर ब्रैकेट क्लोज, और तुम भी डॉट डॉट, तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि डॉट डॉट प्रश्न चिन्ह डॉट डॉट। अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इस सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। इसी तरह की आक्रामकता, पैनापन सावित्री, किन्नी, अशोक सब में है, और यह संवाद सौंदर्य ही रंगमंच को छा लेता है। बाहरी स्थूल दृश्य तत्व यहाँ भी बहुत गौण है। संवाद और भाषा से पैदा होने वाली स्वाभाविक नाटकीयता, दृश्यात्मकता मुख्य है, जिसके लिए राकेश हमेशा सचेष्ट सतर्क रहे। एक और बात इस नाटक में भी सामने आती है कि आक्रोश और द्वंद्व की मनः स्थिति में राकेश के पात्र अधिकतर प्रश्नवाचक वाक्यों में, संक्षिप्त वाक्यों में बोलते हैं। राकेश की मनः स्थिति भी हमेशा उलझन और प्रश्न की रही है। पृष्ठ संख्या 91। ये प्रश्नवाचक वाक्य नाटक की गति बनाए रखने में और पात्रों की द्वंद्वात्मक स्थिति को अभिनय में साकार करने में सहायक ही हुए हैं। अभिनय की भंगिमाओं में विविधता, तेजी, प्रत्यक्ष देखना हो तो यह एक ही उदाहरण काफी है। वह प्रश्न चिन्ह इस घर में खिड़कियों, दरवाजों में प्रश्न चिन्ह, छत में प्रश्न चिन्ह, दीवारों में प्रश्न चिन्ह, तुम में प्रश्न चिन्ह, डैडी में प्रश्न चिन्ह, किन्नी में प्रश्न चिन्ह, अशोक में प्रश्न चिन्ह, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? प्रश्न चिन्ह, बताओ मम्मा, क्या है वह चीज? प्रश्न चिन्ह, कहाँ पर है वह इस घर में? प्रश्न चिन्ह। निश्चय ही पूरा स्थल अपने में बड़ा क्रियात्मक है। एक्शन, सूक्ष्म मनोभाव और क्रियाओं का यह सामंजस्य संवादों को जड़ता से, स्थूल प्रवाह से मुक्त करके हरकत और पूरी चेतना से भर देने का यह सक्षम प्रयास हिंदी नाटक में नया और यूं भी महत्वपूर्ण है, जो नाटक में सर्वत्र है। कहीं कहीं उनके पात्र अपने को व्यक्त करने, समझने, समझाने में अपने को असमर्थ पाते हैं, संवाद भी उसी के अनुरूप ढल जाता है। बड़ी लड़की, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि डॉट डॉट कैसे बताऊं क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह। वह जितने विश्वास के साथ यह बात करता है उसमें डॉट डॉट उसमें मुझे अपने से एक अजनबी सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है डॉट 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 आसपास को, हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे डॉट डॉट खड़ी पाई। राकेश की तरह उनके पात्रों में भी लगता है जैसे उनके मन में जितना कुछ है शब्दों में वह पूरा आ नहीं पा रहा, शायद आ ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द अधूरा माध्यम है, लेकिन निश्चित रूप से आधे अधूरे संप्रेषणीय जीवंत भाषा की पूरी सुरक्षा का नाटक है। ध्वनि, क्रिया और शक्ति का समन्वित सौंदर्य लिए हुए सांकेतिकता राकेश के लिए अभिव्यक्ति और बहुत महत्वपूर्ण, सार्थक, अधिक प्रभावशाली ढंग है। आधे अधूरे में सांकेतिकता लेखक की भीरुता का बाना बनकर नहीं, एक अनिवार्य जीवंत तरीका बल्कि नाटकीय अंग बनकर आई है। कहीं कहीं ये संकेत बड़े सफल हैं और भाषा की स्थूल बनावट से अधिक कारगर। संकेत कभी संवादों से उभरे हैं, कहीं क्रियाओं से, स्थितियों से। आरंभ में घर में घुसते ही सावित्री को सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, तिपाई पर छोटी लड़की का बैग, सोफे पर अशोक की तस्वीरें, पुरुष एक का झूलता पायजामा, टेबल पर बिखरे चाय के बर्तन। ये शुरू में ही संकेत दे जाते हैं जीवन के बिखराव का, एक अव्यवस्थित अनुराग विहीन घर का, परिवार के सदस्यों की परस्पर निरासक्ति का और अकेली स्त्री के सारे दायित्व और उसके बोझ का। सावित्री का बिखरी चीजों को बटोरना भी घर को व्यवस्थित रखने रखने की कोशिश है। पुरुष का बार बार अखबार पढ़ना भी अपने बेकार समय में किसी तरह अपने को व्यस्त और सभी स्थितियों का सामना करने से अपने को बचाए रखना है।